الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وألق عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تو سورة النمل ہم شروع کر چکے ہیں دو کلاسز پہلے، تو اس میں جو آج ابھی آیات تلاوت کی گئی ہیں تو ان کا پہلے ہم ترجمہ پڑھیں گے، پھر تھوڑا سا تفسیر، پھر اس کے بعد معارف مسائل. پیچھے کا ہم نے معارف مسائل پڑھ کے مکمل کر لیے تھے. اگر کسی کو کوئی سوال ہو پچھلے لیکچرز کے اوپر تو وہ آپ لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں. تو اب سورۃ النمل میں ایک بار پھر اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، سورۃ الشعراء کے اندر بھی اور اس سے پہلے سورۃ الانبیاء کے اندر بھی، یعنی جا بجا پورا قرآن جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے سجا ہوا ہے. ٹھیک ہے، جگہ جگہ شروع سے لے کر کے سورہ بقرہ سے جو یہ واقعہ شروع ہوتا ہے تو یہ جاتا ہے آخری پارے تک. ٹھیک ہے، یعنی بالکل غالباً سورہ ناشرات یا اس طرح کی جو آخری پارے کی اما یتسالون کے اندر وہاں تک جو ہے نا یہ چل رہا ہوتا ہے سورہ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. بے شک چھوٹا بڑا کہیں پہ ایک آیت کے اندر، کہیں دو آیتوں کے اندر، کہیں جو ہے وہ یعنی 100 آیتوں سے بھی زیادہ کے اندر، لیکن یہ واقعہ ہے. اب کیوں ہے؟ اللہ رب العزت حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب اللہ تعالیٰ کا جو یہ فعل ہے کہ بار بار موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنا، تو اس میں یقیناً ہمارے لیے بہت زیادہ ہدایت ہے اور مختلف پیرایوں سے اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو ہمارے سامنے رکھا ہے. تو ہر مرتبہ جو واقعہ بیان کیا نا تو وہی ایک ہی الفاظ استعمال نہیں کیے بلکہ مختلف الفاظ میں اور مختلف پہلوؤں کے اوپر روشنی ڈالی ہے اس واقعے کے. ٹھیک ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر تو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا موسیٰ علیہ السلام، مطلب تفسیر کے اندر سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذ قال موسیٰ لأہلہ، یاد کیجئے اس وقت کو جب. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جب اذ سے کوئی جملہ شروع ہوتا ہے تو محذوف عبارت وہاں پر کیا ہوتی ہے کہ یاد کیجئے، وذکر، یاد کیجئے جب. جب سے کیا مراد؟ بیکاز اذ کا مطلب تو ہوتا ہے جب. ٹھیک ہے، تو کیوں اللہ تعالیٰ اس طرح سے بات فرما رہے ہیں کہ موسیٰ نبی علیہ السلام کو یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی توجہ اس طرف دلوا رہے ہیں. اب اس کو نا کچھ حضرات نے جو ہمارے ذرا پیار محبت والے بھائی بند ہوتے ہیں تو انہوں نے نا اس کو کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا نبی علیہ السلام کو یاد کیجئے وہ وقت، ہے نا، یا یہ کہ کوئی واقعہ الم ترا کیفا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا مطلب کہ نبی علیہ السلام نا وہ اوپر سے بیٹھے سب کچھ دیکھ رہے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب کچھ دیکھ رہے تھے. اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ بار بار کے فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا, یا یاد کیجئے وہ وقت کہ جو گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر جگہ موجود تھے, ہر وقت موجود تھے, اور ہر چیز کو جو ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ڈائریکٹلی وٹنس کر رہے تھے بھی, اور کر رہے ہیں بھی, اور کرتے رہیں گے بھی. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو حاضر اور ناظر اور ہر جگہ موجود, ہر جگہ حاضر اور ہر جگہ ناظر, ٹھیک ہے, یہ عربی زبان سے ناواقفیت کی بنا پر اس طرح کی باتیں لوگ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر دوسرے مقاصد بھی ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو ذرا جدا کرنا, دوسروں سے جدا کرنا, اور ایک نیا جو ہے نا وہ طریقہ شروع کرنا تاکہ اپنے نئے مرید بن سکیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں اس طرح کی باتوں کی. بہرحال جب قال موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے کہا لأہلہ, اپنے گھر والوں سے, اہل سے اپنے کہا, ٹھیک ہے, اپنے اہل سے, تو اپنے اہل سے مراد جو اپنے گھر کے اندر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں, جس کے اندر سب سے پہلے جو ہوتی ہے وہ بیوی آتی ہے. یہاں پر تو جیسے آگے تفسیر میں بھی آ رہا ہے, یہاں تو موسیٰ علیہ السلام کی اولادی ابھی نہیں تھی, موسیٰ علیہ السلام کی صرف اور صرف بیوی تھی, تو بیوی کے لیے بھی اہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ جی اہل بیت جو ہے نا وہ صرف داماد اور بیٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے, بیویاں تو اہل بیت کے اندر ہیں ہی نہیں. یہ کہاں سے آ گئی بھائی کہ اہل بیت جو ہے نا وہ صرف بیٹی اور داماد اور نواسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت لوگ کہتے ہیں نا بھائی, بہت سارے اس طرح کے لوگ ہیں, دونوں طرف ہیں, ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, کہ بیویاں نہیں شامل ہیں اس کے اندر, ہے نا, بس ایک بیوی جن سے کہ وہ بیٹی تھی ان کو شامل کر لیا, اور باقی بیویاں نکال دیں اہل بیت میں سے. تو بھائی کہاں سے اپنی اس طرح کی لے کر کے آ جاتے ہیں, اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی. تو اپنی بیوی سے, اپنے اہل سے کہا انی آنست نارا, کہ بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ, ٹھیک ہے, سآتی کو منہا بے خبر ہے کہ سآتی کم ان قریب میں لے کر کے آتا ہوں تمہارے پاس, منہا اس میں سے, یعنی وہ جو آگ میں نے ابھی پائی ہے, میں نے جس کو فیل کیا ہے نا اس آگ کو, آنستو, ٹھیک ہے, تو اس یعنی جس آگ کا مجھے ابھی ادراک حاصل ہوا ہے کہ جی ہاں فلانی جگہ پر ایک آگ ہے, ایک روشنی ہے, ایک شعلہ ہے, تو میں وہاں سے نا وہاں سے انقریب تمہارے لیے لے کر کے آتا ہوں, بے خبرن, کچھ خبر یعنی کچھ راستہ ہوا, کیونکہ راستہ بھٹک گئے تھے. ٹھیک ہے, تو اب راستے کی کچھ خبر, کیونکہ جب آگ جل رہی ہے تو جلانے والا یقیناً وہاں پر کوئی نہ کوئی ہوگا, تو میں اس سے پوچھ کر کے آتا ہوں, خود بخود تو نہیں آگ جل جاتی نا. ٹھیک ہے, ایک عام سوچ والا عقل والا انسان بھی جو ہے وہ کسی بھی چیز کو دیکھ کر کے سوچتا ہے کہ یہ چیز کسی نے کری ہے, خود بخود نہیں ہو جاتی. یہ خود بخود والا کانسیپٹ ہے نا, یہ تو چند بے وقوف کہتے ہیں یہ دنیا خود بخود بن گئی اور یہ سارا کا سارا نظام خود بخود بن گیا, خود بخود چل بھی رہا ہے اور خود بخود ختم بھی ہو جائے گا, کہ خود بخود نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے, ایک عام چھوٹی سی چیز جو ہے وہ خود بخود نہیں ہوتی, تو اتنا بڑا کائنات کا نظام جو ہے وہ خود بخود کیسے ہو گیا. تو اصل میں بیسیکلی یہ بیوقوف لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا, یہ بھی صرف جھوٹ ہی بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو بھی پتا ہے ایسا خود بخود کچھ نہیں ہو سکتا. اتنے بیوقوف کے تھوڑی ہوتے ہیں, یعنی اتنا بیوقوف تو خالی کوئی مینٹلی ڈسیبلڈ انسان ہی ہو سکتا ہے کہ جو کہ خود بخود. ٹھیک ہے, تو وہ بیسیکلی جو خود بخود کی راہ گلاپنے والے لوگ ہیں وہ دراصل جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں خالی, یعنی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اپنے سے زیادہ بیوقوف لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہاں پہ آگ جل رہی ہے تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا, تو میں انقریب وہاں سے خبر لے کر کے آتا ہوں, وہ آتی کم او آتی کم, یا یہ کہ میں وہاں سے تمہارے لیے لے کر کے آتا ہوں بے شہابن, کوئی جلتی ہوئی چیز, جیسے شہاب ثاقب ہوتا ہے نا, جلتا ہوا ایک انگارہ جو کہ میٹیورائٹس کی شکل میں جلتا ہوا جو ہے وہ ارتھس ایٹموسفیئر کے اندر داخل ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ رگڑ کی وجہ سے, فرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میٹیورائٹ, تو اس کو اسی وجہ سے شہاب ثاقب کہہ دیتے ہیں. تو ایک جلتی ہوئی کوئی چیز نا, قبصن, کوئی یعنی جلتی ہوئی کوئی لکڑی وغیرہ, کوئی ایسا بھوسا وغیرہ لے کر کے آتا ہوں, لعلکم تصطلون, تاکہ تم سیکو, लेकिन यानी कि उस आग पुसे को गर्म गर्माइश पाओ। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्लूरल का सीगा इस्तेमाल किया है इसके बारे में मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने आगे लिखा है कि प्लूरल का सीगा एक बीवी के लिए क्यों इस्तेमाल किया, एक से ज्यादा बीवियां तो थी नहीं, शुएब अलैहिस्सलाम की एक ही बेटी से निकाह करके उनको लेकर के आ रहे थे। ठीक है, तो ये है तो प्लूरल यानी जमा का सीगा, लेकिन मानी इसका एक ही है और ये उसी तरीके से है जैसे कि हम उर्दू में बड़े लोगों के लिए या तमीजदार घरानों में तुम की बजाय आप का लफ्ज इस्तेमाल होता है, हालांकि आप जो है वो उर्दू जुबान के अंदर एक मुजक्कर, बल्कि तुम का जो लफ्ज है ना असल में ये भी मुजक्कर, ये भी जमा ही है, क्योंकि वाहिद जो है वो तो है तू, वाहिद क्या है तू उर्दू के अंदर, लेकिन तुम जो है ना ये तुम, ये एक्चुअली इसके अंदर एक तू के मुकाबले में ज्यादा अदब है, ठीक है ना, और इससे भी ज्यादा अदब जो है वो आप में है। ठीक है, तो यानी जमा का सीगा जो है वो अदब की वजह से इस्तेमाल किया जाता है, अरबी में भी ऐसे ही होता है, उर्दू में भी ऐसे ही होता है, उर्दू तो वैसे भी अरबी की बेटी ही है। तो लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम सेको, फलम्मा जा आहा पस जब, फा पस लम्मा जब, जा आहा वो पहुंचे उस आग के पास। ठीक है, हा जो है ये खाली एक प्रोनाउन है जो कि उस नार नार की तरफ पॉइंट कर रही है जो पिछली आयत में थी। जब वो पहुंचे ना उस नार की तरफ, नू दिया तो उनको आवाज दी गई, ठीक है, उनके पास आवाज आई, अम्बूरिका के बूरिका, बाबरकत है तू, या बरकत पहुंचाई, बरकत है बूरिका आप पर, ठीक है, सॉरी बारका युबारिको, सॉरी बरकत आप पर नहीं, ये काफ जो है ये जमीन का नहीं है, तो बरकत है मन फिन नारी, जो आग के अंदर है, बरकत है जो आग के अंदर है, वह मन हौलहा और जो उसके इर्द गिर्द है। हौल का मतलब क्या होता है, गिर्द, गिर्द के लिए भी लफ्ज हौल इस्तेमाल होता है, जैसे कर हौला वाला कुवता के अंदर तो पूरा बहुत लंबी तशरीह है उसकी, लेकिन जैसे माहौल उर्दू के अंदर जो मा हाउल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, ये मा हाउल जो है ये अरबी का मा प्लस हाउल, वट एवर इज अराउंड, मा वट एवर हाउल अराउंड, ठीक है, तो उर्दू के अंदर इस तरीके से अरबी से अल्फाज आए हैं। तो माहौल, इसका माहौल अच्छा नहीं है, यानी इसके इर्द गिर्द के हालात अच्छे नहीं है, इसके इर्द गिर्द के लोग अच्छे नहीं है, ठीक है, तो मन हौलहा के जो उसके आस पास है, इस आग के, जो आग के अंदर है और जो आग के आसपास है। अब कौन अंदर है कौन आसपास है, ये बड़ी तशरीह तलब चीज है, ये आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। वह सुबहानअल्लाह रब्बिल आलमीन, और पाक है अल्लाह, पाक है मतलब सिर्फ कोई फिजिकल गंदगी से पाक नहीं, सिर्फ जो है वो कोई नाउज़बिल्लाह जैसे जैसे स्पिरिचुअल गंदगी होती है जिसको गुनाह कहते हैं, तो गुनाह से पाक नहीं, बल्कि हर किस्म के नुक्स से पाक है, हर किस्म के फॉल्ट से, हर किस्म की गलती से, हर किस्म की मिस जजमेंट, ये भी तो एक कोताही होती है ना, मिस जज कर लिया आपने किसी मामले को, मिस कैलकुलेट कर लिया आपने किसी मामले को, और आपने जो है वो कुछ गैर नाइंसाफी वाला मामला कर दिया किसी के साथ, ये सारी की सारी कोताहियां होती हैं, सारी की सारी गलतियां होती हैं, सारी की सारी कमियां होती हैं, पेशियां होती हैं, कमी बेशी, अल्लाह ताला जो है ना वो कमी बेशी से पाक है, कोई कोई ना कमी है ना कुछ, कोई चीज इनअप्रोप्रिएट नहीं अल्लाह ताला के बारे में। सुबहानअल्लाह, पाक है अल्लाह, और वो कौन है, रब्बिल आलमीन, आलमीन का पालने वाला, आलमीन को के अंदर जो कुछ भी है उसको दर्जा बदर्जा उसके कमाल तक पहुंचाने वाला, जो भी, हर चीज का अपना एक कमाल होता है, ठीक है, जैसे कि एक पौधा है, तो पौधा जब बीज में के अंदर होता है तो वो उसका बिल्कुल एक इब्तदाई शक्ल होती है कि जब वो, यानी बल्कि इब्तदा भी उसकी नहीं होती, वो बिल्कुल एक यानी पोटेंशियल होता है उसके अंदर, बीज के अंदर उगने का। अब वो पौधा वहां से निकलता है छोटी सी कुंपल की शक्ल में, फिर वो बढ़ता है बढ़ता है, हत्ता कि वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाता है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता, उसकी मैक्सिमम हाइट इतनी है, मैक्सिमम विड्थ इतनी है, मैक्सिमम उसने जितने फल देने फूल देने वो उतने ही है जितने के उसकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो इसको कहते हैं कि किसी चीज को उसके दर्जे कमाल तक पहुंचा देना। उस पौधे का कमाल जो है ना वो ये है कि वो कितना ज्यादा ग्रो कर सकता है और कितना फल और कितना फूल दे सकता है, ये इसका कमाल है। तो जिस तरह पौधे का एक कमाल है, नुक्ताए उरूज है, उसी तरह एक इंसान का नुक्ताए उरूज नुक्ताए कमाल हो सकता है, हर चीज का एक नुक्ताए उरूज नुक्ताए कमाल हो सकता है। तो अल्लाह ताला जो रब की जात है, यानी कि जो रब वाली सिफत है ना, वो क्या है कि इब्तिदा से लेकर के इंतहा तक तदरीजन उसको रिस्क पहुंचा पहुंचा करके, उसकी जरूरियात पूरी कर करके अल्लाह ताला उसको पालते हैं। ठीक है, आलमीन के अंदर हर चीज को पालते हैं, हर चीज को। ठीक है, तो सुभान अल्लाह ही रब्बिल आलमीन, और इस पालने के अंदर ना कोई नुक्स नहीं छोड़ते, कोई कमी नहीं छोड़ते, बिल्कुल जितनी जिसकी जरूरत है और कमाल तक पहुंचाने के लिए जैसा अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर बनाई है उसको उसके हिसाब से ही पालते हैं, गलती कोताही कोई नहीं करते। तो सुभान को और रब को जो है ना वो एक ही आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहाँ पर समेट दिया है। ठीक है, अब ये हम भी जाहिर है आलमीन के अंदर है कि नहीं है, या हम आलमीन से बाहर की कोई मखलूक है, हम आलमीन से बाहर है कोई, इसी के अंदर ही है ना। और इस इतने बड़े आलम या इन तमाम आलमीन में हमारी हैसियत क्या है, बहुत ही कुछ है ही नहीं, मतलब यानी नॉट इवन वर्थ मेंशन है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कि आलमीन को पालने वाले हैं, वो हम ही नहीं पाल सकते ना, राइट। ये तो कोई ऐसे ही हो गया कि एक जो है ना वो बाग का माली है, और बाग के अंदर ना वो हर हर पौधे की जरूरियात पूरी करता है, और बहुत ही माइनर लेवल के ऊपर जाकर के पूरी करता है, और एक बैक्टीरिया या एक बाग के अंदर रहने वाला कोई 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 बहुत ही छोटा सा वर्म जो है ना, वो कहे कि ये माली जो है ना ये हाँ रब्बुल आलमीन, यानी ये इस बाग का रब तो है, रब्बुल जन्ना है ना, इस जन्नत का इस बाग का तो रब है, लेकिन मुझे मुझे ही नहीं दे सकता ये खाना पीना, मेरी जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। एक छोटा सा कीड़ा उस बाग के अंदर ना ऐसे सोचना शुरू कर दे तो क्या कहा जाएगा, भाई भाई जब ये हर एक की जरूरत पूरी कर रहा है, और तुम खुद कहते भी हो कि हर एक की जरूरत पूरी कर रहा है, भाई अपने मुंह से कहते रहते हो हर वक्त कि ये तो पूरे बाग की जरूरियात पूरी करता है, फिर तुम्हारे साथ क्या इसको दुश्मनी है, तुम क्या क्या चीज हो कि जो कि इसकी दस्तरस से बाहर है, इसकी कैपेसिटी से, इसकी कुदरत से बाहर हो, क्यों है अपने आप को ऐसा समझते हो ना, क्यों अपने आप को ऐसा समझते हो ना। उसी तरीके से हमारा भी मामला है कि जब हम अल्लाह ताला के ऊपर बद एतमादी करते हैं ना, कि अल्लाह ताला ठीक है हम मुसलमान हैं, हम दिन में पता नहीं कितनी मरतबा कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम, राइट, पूरे रब आलमीन का जो रब है ना, लेकिन दिल में हमारा वही नहीं जी हमें नहीं पाल सकता, हमें तो फिर खुद ही अपने आप को पालना है, राइट, या हमें तो किसी और ने पालना है ना, अल्लाह नहीं पालेगा हमें। ये ऐसे ही है जैसे उस कीड़े का मामला। ठीक है, आगे फरमाते हैं, अच्छा क्या लिखा आपने, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट या अकायद है कि अल्लाह अपने सारे सिफात में इजाफा होते ही रहते हैं, इजाफा होते रहते हैं, या अल्लाह की जात और सिफात अब कामिल है, अब ना कमी हो सकती है ना इजाफा हो सकता है। अल्लाह की सिफात में ना कमी हो सकती है ना इजाफा हो सकता है, कमी तो डेफिनेटली नहीं हो सकती, ठीक है, इजाफा होने की जो बात है ना, ये मेरे जहन में कोई ऐसी बात सवाए इसके एक बात के अलावा और कोई बात ऐसी नहीं आ रही कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जो सिफात है वो बढ़ती हैं, जैसे रहमान होने की सिफत जो है वो बढ़ती है, ऐसी तो कोई चीज जहन में नहीं आ रही, कभी किसी से सुनी हुई या कहीं पढ़ी हुई। हाँ दूध, लेकिन जो चीज है वो क्या है, नई शान, कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, ठीक है ना, तो हर रोज एक नई शान होती है। अब ये नई शान का मतलब जो है वो ये यानी कोई अल्लाह की शान के अंदर इजाफा हो रहा है या अल्लाह की जो है वो बस यानी नई पिक्चर आ रही है, नई शान आ रही है। ऑलरेडी जो अल्लाह ताला की शानें मौजूद हैं उन्हीं में से जो है ना वो नई से नई, नई से नई, नई से नई, कोई कोई चीज ऐड नहीं हो रही इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे कि हमारे हजरत जो है वो मिसाल देते हैं बात समझाने के लिए खातिर कि जैसे दुल्हन आती है ना तो वो अपने साथ बहुत सारे नए कपड़े लेकर के आती है, तो वो कपड़े उसके पास पहले मौजूद होते हैं ना, ठीक है, लेकिन अब वो हर दिन जो है ना वो एक नई शान से, नया मेकअप, नई ज्वेलरी, नए कपड़े। भाई जो करोड़पति होते हैं उनके यहाँ पर ऐसे ही होता होगा ना, गरीबों के यहाँ तो ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन जो अरबपति करोड़पति बहुत सारे लोग हैं तो उनके यहाँ तो फिर हर रोज एक नई शान बेगम साहिबा की। ठीक है, तो है तो वो चीजें पहले से मौजूद, लेकिन बस चेंज ऑफ क्लोथ्स, चेंज ऑफ मेकअप, ये मुस्तकिल हो रहा है। तो अल्लाह ताला के अंदर कोई कमी नहीं है ना, कमी होगी तो वो उस कमी को पूरा करेंगे ना बढ़ करके। ठीक है, इफ अल्लाह सुब्हान तआला सिफात were increasing, then that would mean that before he was less. Jee, jada kar, mashallah. ठीक है, अभी यही बात साजिद ने कही और आपने यही अंग्रेजी में लिख दी। ठीक है, यानी पहले अल्लाह ताला में कोई कमी थी और वो कमी जो है ना वो अब बढ़ बढ़ करके जो है वो पूरी की जा रही है। ठीक है, तो वही बात है। अच्छा, या मूसा, अच्छा आगे फरमाया ए मूसा, यानी जो आवाज आ रही है ना उसके अंदर से आग में से, ए मूसा इन्नहु, बेशक। अब हू जो है ये जमीर शान और किस्सा वगैरह, ये नहव की डिटेल्स है, तो बेशक से ही ट्रांसलेट करते हैं इन्नहु अनल्लाह, मैं अल्लाह हूं, अल अजीज अल हकीम। ठीक है, जो कि अल अजीज है जिसका के हमेशा अपर हैंड ही रहता है, जबर दस्त, दस्त यानी हाथ, हैंड और जबर का मतलब जो ऊपर होता है। ठीक है, तो अपर हैंड जिसका हमेशा रहता है, नीचे वाले कुछ कर लें, किसी धोखे में मुबतला हो जाए कि गोया उनका अपर हैंड हो गया, लेकिन होता हुआ तो कोई नहीं है, तो बस धोखे में मुबतला है कि उनका हैंड जो है ना वो अल्लाह के हैंड से ऊपर हो गया, नहीं कोई नहीं होता, होता हमेशा अल्लाह ही का हाथ ऊपर है। ठीक है, बाकी सारों का हाथ जो है ना वो जेर दस्त होता है, जबरदस्त नहीं होता, जेर दस्त होता है। और अल हकीम, बस ये है कि जाहिरी तौर पर अल्लाह ताला जो है ना वो अपना हाथ जाहिर नहीं करते, अपना हुक्म जो है ना वो हर वक्त जो है वो सादर नहीं करते रहते, हर वक्त तफरीक बैन अल हक वल बातिल जो है वो करते नहीं रहते, बल्कि उसके अंदर जो है ना वो अल्लाह ताला वक्फा देते रहते हैं और ढील देते रहते हैं और है ना, तो लेकिन ये बस एक एक विद इन बाउंड ही ऐसा मामला होता है, हाथ हमेशा ऊपर अल्लाह का ही रहता है। तो हिकमत है अल्लाह ताला की, अल हकीम है, तो इस वजह से इस तरह दुनिया के मामला अल्लाह ताला करते हैं, ढीले भी देते हैं बड़े बड़े काफिरों को, बड़े बड़े नाफरमानों और सरकशों को अल्लाह ताला जो है दुनिया के अंदर थोड़ी सी बादशाह वगैरह दे देते हैं थोड़े दिन के लिए, तो ये हिकमत की वजह से होता है अल्लाह ताला। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात कामिल है, मगर हम नित नई सिफात का नजारा कर सकते हैं, मगर हम नित नई सिफात का नजारा कर सकते हैं, तो वो तो हम हमारा नजारा है ना, क्योंकि अल्लाह ताला के बारे में जितना आप अल्लाह ताला की सिफात के ऊपर जितना गौर करेंगे, सिफात के ऊपर गौर करने में तो इनका में तो कोई ममानियत नहीं है ना। ठीक है, अल्लाह ताला की रहमत के बारे में गौर करें, अल्लाह ताला की जो है वो मग़फ़िरत के बारे में गौर करें, अल्लाह ताला की जो है वो जब्बारियत के बारे में गौर करें, तो ज़ाहिर है जितना गौर करेंगे उतना मजीद तफसीलात खुलेंगी, मजीद जो है वो उसकी मैनिफेस्टेशन उसकी जो है वो यानी इजहार हमारे सामने खुलता चला जाएगा। ठीक है, तो अनल्लाह अल अजीज अल हकीम, वल की वल की असात, और आप डाल दीजिए अपने असात, जो मूसा अलैहि सलाम की और तमाम नबियों की सुन्नत कि उनके हाथ में एक असा रहता था, लकड़ी का, बस एक लकड़ी टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी हो, ठीक है, सीधी हो, टेढ़ी हो, दरख्त के शाख तोड़ी भी हो, जो भी हो, बस वो असा के तौर पर देखने के लिए या उसको लेकर के साथ चलना ये नबियों की सुन्नत है। तो जो मशायख होते हैं, बड़े जो होते हैं ना मशायख, तो फिर वो अपने साथ इस असा की सुन्नत को भी लेकर के साथ साथ चलते हैं। आप में से किसी ने एक दफा ऐसा जैसे पूछा कि भाई मैं मदरसे जा रहा हूँ तो मैंने पढ़ा कि जी असर जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, तो मेरे दिल चाहता है कि जी मैं भी जो है ना वो असा लेकर के चला करूँ। तो मदरसा जो था वो मशाइख का मदरसा था, तो हमने कहा कि भाई ये तो अजीब फंस गए, हम तो फंस गए, अजीब सवाल उन्होंने कर लिया कि मैं असा लेकर के चला करूँ। ठीक है, क्यों फंस गए? इसकी वजह ये थी कि अगर तो हम इनको कहते हैं कि नहीं आप असा नहीं लेके चलें, ठीक है ना, तो ये तो खिलाफ सुन्नत बात हो गई, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम सलाम जब असा लेके चलते थे तो फिर हम किसी को कैसे मना कर सकते हैं कि आप असा ना लेकर के चलें, ठीक है ना। और अगर हम इनको कहते हैं कि ठीक है आप सुन्नत पूरी करें, आप असा लेकर के चलना शुरू कर दें, है ना, तो पूरे मदरसे के अंदर माशाल्लाह मशायख भी हैं, बड़े बड़े उलमा भी हैं और दूसरे बहुत सारे तुलबा हैं, क्या उनको सुन्नत की फिक्र नहीं है? उनमें से तो कोई आसानी लेके चलता है ना, उनमें से तो कोई आसानी लेके चलता। तो एक ये जो छड़े है ना यंग तालिबे इल्म, वो भी इब्तदाई दर्जों के, वो अगर अपने साथ असा लेकर के चलेंगे तो कैसा अजीब सा लगेगा, है ना, कि भाई इन्हीं को सुन्नत की फिक्र पड़ी हुई और बाकी लोग जो है वो सुन्नत के साथ तो नहीं है, ठीक है ना। तो क्या वजह है इसके अंदर? तो बड़ी एक एक मुश्किल सवाल था ये इस फकीर के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई तो इसका जवाब दे दिया। अगर आप में से कोई कोशिश करे इसका जवाब देने की तो अच्छा रहे। क्या वजह कि उन तालिब इल्म को कहा कि नहीं आप ये असहा की जो सन्नत है ना इसको पूरी करने की कोशिश ना करें? ठीक है, मुफ्ती साहब से भी कंफर्म किया फिर इसको, तो क्या भाई अगर someone wants to take a shot at him, 40 साल उम्र के बाद रखना सुन्नत है, माशाल्लाह ये तो अच्छी बात बताई, या आप अपनी तरफ से कह रहे हैं या आपने कहीं पढ़ा है ये वाली बात, लेकिन 40 साल की उम्र के बाद वाली हमने तो कभी नहीं सुना। असा सुन्नत एट लेटर एज ऑफ लाइफ, ये सुन्नत आम लोगों के लिए नहीं, बड़ों की सुन्नत। देखें, हमने हमेशा अपने बड़ों को देखा कि यानी सारे उलमाई होते हैं और दूसरे भी मशायख होते हैं, लेकिन जो सबसे सीनियर होते हैं ना वो असा लेकर के चल रहे होते हैं, जैसे इमाम जो हैं, ठीक है, मस्जिद के इमाम हैं या मजमे के अंदर जो सबसे बड़े हैं शेख, ठीक है ना, ठीक है, दो एक दो और भी हो सकते हैं सीनियर मशायख, वो खाली असा लेकर के चलेंगे, ठीक है ना, और कोई ऐसा लेकर के नहीं चलता। हाँ, जैसे कि आपने ये लिखा बिल्कुल सही कि सहाबाए कराम नबी अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में आसानी रखा करते थे, सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम आसा रखा करते थे, ठीक है, तो इस वजह से है ना ये जूनियर्स की सुन्नत नहीं है बल्कि ये सीनियर्स की सुन्नत है, और जो बड़े हैं वो लेकर के चल रहे हैं, जैसे कि हमारे हजरत होते हैं, बाकी कोई आसानी लेके चल रहा होता, ये नहीं है कि दूसरों को सुन्नत की परवाह नहीं है, दूसरे जो है सुन्नत नहीं, बल्कि ये ऐसे ही लगता है। बहरहाल तो इस तरह से फिर ना तो सुन्नत के खिलाफ वर्जी वाला मामला हुआ और ना जो है वो ये हुआ कि अच्छा भाई तुम्हें किसने बताया कि तुमने असा रखना है, फिर तो हमारी तो खाल खींच ली जाती है, ठीक है ना, तो भाई आप अच्छा आप लोगों को असा लेने के लिए कह रहे हो, ओके आप ही एक रहेंगे, चले मेहरबानी फरमा दी। अच्छा, तो वो अल्की असा, ठीक है, कि आप अपने असा को डाल दीजिए, यानी हाथ में रहता था तो उसको आप जमीन पर भेज दीजिए। फलम्मा रआहा, बस जब रआहा उसने देखा उसको, यानी मूसा अलैहि सलाम ने इस आसा को देखा ना जमीन पे पड़ा हुआ, तहतज्जु कअन्नहा, यानी फन फिन फिनाते हुए, कअन्नहा जानु, ठीक है, कि गोया कि वो सांप था, ठीक है, यानी वो अजदहा जो है ना वो सांप नजर आना शुरू हो गया, वो सॉरी वो जो आसा था वो सांप बन गया, बाकायदा बन गया, खाली यानी कि इनको जाहिर बन गया तो नजर भी तो आएगा ना, ठीक है, तो कि वो सांप था, यानी कान का मतलब तो गोया ही से करते हैं, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी ये खाली विजुअल डिसेप्शन नहीं थी, जैसे कि वो जादूगरों की जो रस्सियां थी वो सांप जो बनी थी ना वो खाली एक विजुअल डिसेप्शन थी, आंखों का धोखा था, यहां पर असल में वो बन गया था, ठीक है। तो इन्होंने जब देखा ना उसको फनफनाते हुए जैसे सांप, तो वल्ला मुदबिरन, तो ये इन्होंने तो पीठ फेरी और भागे वहां से, ठीक है, ولم يعقب، اور ایسے بھاگے کہ پیچھے بھی نہیں مڑ کے دیکھتے، ٹھیک ہے، لم يعقب، عقبہ پیچھے بھی نہیں مڑ کر کے دیکھا، ایسے بھاگے، ٹھیک ہے، لیکن آگے سے حکم آ گیا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، آپ ڈریے مت، انی لا يخاف لدی المرسلون، بے شک میں، لا يخاف لدی، نہیں ڈرتے میرے پاس المرسلون، ٹھیک ہے، جو رسول بنا دیے گئے ہوتے ہیں نا، جن کو اعزاز دیا گیا ہوتا ہے، جن کو رسپانسبلٹی دی گئی ہوتی ہے رسالت کی، ٹھیک ہے، نبوت کی، تو وہ پھر میرے پاس ڈرا نہیں کرتے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلا رہے ہیں، کیونکہ آواز تو اللہ تعالیٰ ہی کی تھی نا، آگ میں تو اللہ تعالیٰ نہیں تھی، یہ بات آگ میں آگے ہم ڈسکس کریں گے، لیکن ہو سکتا ہے کوئی اگلی کلاس نہ لے سکے، تو ابھی سے بس یہی، اللہ تعالیٰ موجود نہیں تھے اس آگ کے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی تھی، ٹھیک ہے، تو لدیا سے مراد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، کہ میرے پاس جو ہے نا وہ المرسلون ہے، مرسلون جو ہے وہ ڈرتے نہیں، تو آپ مت کریے، ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا اور واقعی رک گئے اور واپس آ گئے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کے ڈرنے کے اوپر کافی تفصیل سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملا دوبارہ بھی بات کر لیں گے کہ کیسے کیسے مواقع آئے تھے جس میں موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اس قسم کا خوف والا معاملہ پیش آیا تھا، ٹھیک ہے. لیکن پہلی دفعہ جب خوف والا معاملہ پیش آیا تو ایسے بھاگے کہ مصر سے نکل کر کے مدین پہنچے اور مدین جا کر کے روکے درخت کے نیچے، ایسے بھاگے کہ یعنی ملک ہی چھوڑ دیا. دوسری دفعہ، یہ دوسری دفعہ تھی کہ بھاگے اور ایسا بھاگے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تھے، لیکن آواز آ گئی، رک گئے، واپس آ گئے. اور پھر اس کے بعد تیسری دفعہ جب خوف والا معاملہ پیش آیا کہ جب جادوگروں سے مقابلہ تھا اور سانپ جو ہے وہ سوری رسیاں جو ہے وہ سانپ بن کے دکھنا شروع ہو گئی تھی، اس وقت بھی دل کے اندر ایک اندیشہ آیا لیکن بالکل بھی نہیں بھاگے، بس دل کے اندر ایک اندیشہ آیا، اور وہ اندیشہ بھی جو تھا نا وہ بھی کوئی جانی خوف نہیں تھا، بلکہ وہ بھی جو ہے نا ایک دین کا ہی ایک فکر تھی جس کی وجہ سے دل میں اندیشہ آیا تھا، ٹھیک ہے. تو تیسری دفعہ جب خوف والا معاملہ پیش آیا تو اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں، اور چوتھی مرتبہ جب خوف کا معاملہ پیش آیا وہ تو سب سے بڑا امتحان تھا. آگے سمندر ہے، پیچھے جو ہے وہ فرعون کا لشکر ہے، اور ساتھ والے جو ہے نا وہ بھی الٹا جو ہے نا وہ الزام دینا شروع ہو گئے، تمہاری وجہ سے ہم دھر لیے گئے، انا لمدرکون، ہے نا. اور ایسے موقع کے اوپر دل کے اندر اندیشہ بھی نہیں آیا، کوئی فکر بھی نہیں آئی، بلکہ الٹا انہیں کو ڈانٹنا شروع کر دیا، کلا الٹا ڈانٹنا شروع کر دیا لوگوں کو، یعنی ایسا بھروسہ، ایسا اعتماد، اور ایسے جو ہے نا وہ چٹان بن چکے تھے کہ جو بولنے والے تھے انہیں کو چپ کرا دیا، اور پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے راستے کھول دیے. تو ایسے موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں. پہلے دن موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں تھے جیسے کہ اس دن تھے، چوتھے موقع کے اوپر جیسے تھے نا، پہلے موقع کے اوپر ایسے نہیں تھے، دوسرے موقع کے اوپر ایسے نہیں تھے، تیسرے موقع کے اوپر ایسے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر نا جیسے پالتے ہیں نا، کھانا دیتے ہیں، پینا دیتے ہیں، لباس دیتے ہیں، باقی ضروریات پوری کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تربیت کی ضروریات بھی پوری کرتے ہیں، رائٹ، تربیت کی، ہدایت کی، رائٹ، وہ بھی ضروریات اللہ تعالیٰ پوری فرماتے ہیں، اور تدریجن ہی پوری فرماتے ہیں درجہ بدرجہ. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے جو اتنا کھولا ہے تو ایسی کو تھوڑی کھول دیا بھائی، ٹھیک ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا، ثم یعنی گناہ کیا، کوئی غلطی ہو گئی اس سے، ٹھیک ہے. اب اگر المرسلون کے لیے لفظ ظلم استعمال کر رہے ہیں تو یعنی ظاہر ہے اس ظلم کا مطلب جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا، بلکہ کوئی خلاف اولا کام بھی اگر کسی رسول سے ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی ظلم ہی کا لفظ اس کے لیے بھی استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے. حالانکہ اس نے ظلم کیا نہیں ہوتا، بلکہ خالی ایک خلاف اولا کام کیا ہوتا ہے، ایک لیس دین پریفرڈ والا معاملہ اس نے کر لیا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس نے ظلم کیا، ثم بدلا حسنا بعد سوء، फिर उसके बाद उसने तब्दील कर दिया नेकी से बादसुएन, यानी गलत काम करके, बुरा काम करके फिर नेकी से उसको तब्दील कर दिया, यानी फॉलोड इट अप विद ए गुड डीड। ठीक है, बेसिकली थुम्मा बदला हुस्न बादसुएन का मतलब कि उस गलती को फिर फॉलो अप कर लिया एक नेकी के काम से। और ये नेकी का काम जो है ना, ये क्या, कौन सा नेकी का काम, बड़ी चले ये क्विज क्वेश्चन। ठीक है, वैसे भी हम पूरा तो उसको कर नहीं सकेंगे आज, तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है थुम्मा बदला हुस्नम बादसु है ना, कि गुनाह कर दिया तो अब गुनाह को जो है ना किसी नेकी के काम से फॉलो अप करो। ठीक है, तो इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, कि जो नेकियां होती है ना वो सय्यात को यानी गुनाहों को ले जाती हैं, यानी रिमूव कर देती हैं। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, या यहाँ पर जैसे इन्ना मन ज़लमा थुम्मा बदला हुस्नन बाद सुएन फइन्नी गफूरुर रहीम, बस मैं तो माफ करने वाला हूँ और रहीम हूँ। ठीक है, तो अब इसकी तफसील थोड़ी सी अगर कोई बताए, आगे लिखी भी नहीं है इतनी तो इस वजह से यहीं पर अगर डिस्कस कर रहे, इसकी कोई तफसील, क्या गुनाह करो और गुनाह करने के बाद फिर जो है ना वो नेकी का काम कर लो तो गुनाह खत्म हो जाता है, ऐसा ही है? आपने लिखा तौबा, लफ्ज तो आपने लिख दिया लेकिन थोड़ा आगे पीछे भी कुछ बता दें आप क्या करना चाह रहे हैं। तौबा, तौबा से दुआ से, ठीक है बात, लेकिन थोड़ी सी इसमें और तफसील है। तौबा की एक शर्त, अगर नदामत हुई और नेकी कर दी, गुनाह का कफारा नेकी करो तो नेकी करने से गुनाह माफ हो जाता है। फर्स्ट तौबा देन इंटेंशन ऑफ नॉट डूइंग अगेन एंड देन डूइंग अखिलाफ। अच्छा चले ठीक है, जदा खिलाफ, उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, मुकम्मल जवाब नहीं दिया लेकिन अच्छे जवाब दिए। तो इन व इरादा से गुनाह, यू हैव टू स्टॉप सिंस फर्स्ट। नहीं, देखें गुनाह जो है ना कितने तरह के होते हैं, एक होता है सगीरा गुनाह और एक होता है कबीरा गुनाह, सगीरा और कबीरा। ठीक है जी, अब आए सही तफसील के ऊपर, कि सगीरा गुनाह जो है ना वो नेकी का काम करने से माफ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जुम्मा पढ़ने के लिए गए तो जुम्मे से जुम्मा तक जितने जो है ना वो सगीरा गुनाह किए थे माफ हो गए। वुजू किया, वुजू एक नेकी का काम है, तौबा शौबा कोई नहीं करी, वुजू किया राइट, नमाज पढ़ने गए जुम्मे की राइट, तो ये नेकी का काम कर रहे हैं, तौबा को थोड़ी करी थी, तो इससे भी गुनाह माफ हो जाते हैं। लेकिन वो कौन से होते हैं, सगीरा गुनाह। ठीक है, जो कबीरा गुनाह होते हैं ना वो नेकी का काम करने से, यानी इस तरह के नेकी के आमाल करने से माफ नहीं होते, लेकिन लेकिन तौबा ये भी तो एक नेकी का काम है। तौबा क्या कोई गुनाह का काम है, या तौबा कोई जो है वो ना नेकी है ना गुनाह है, कोई न्यूट्रल किस्म का काम है? नहीं, तौबा तो यानी एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़ी नेकी है तौबा करना। ठीक है, तो कबीरा गुनाह जब इंसान कर लेता है तो वो भी नेकी से माफ हो जाता है, लेकिन वो वाली नेकी कौन सी, वो जरूरी है कि तौबा वाली नेकी। और तौबा के अंदर फिर वही तीन शरायत है कि नदामत हो गुनाह के ऊपर, आगे ना करने का इरादा हो, और फिर उसको उसके ऊपर इस्तकामत के लिए कुछ ना कुछ अमल किया जाए। तो ये तीन चीजें मिलकर के तौबा बन जाती है, तो ये तौबा तो सबसे बड़ी नेकी है, इससे जो है वो कबीरा गुनाह भी अल्लाह ताला माफ कर देते हैं। ठीक है, तो उसूल वही है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, लेकिन हसनात जो है वो जब सय्यात कबीरा है तो हसनात से मुराद तौबा। ठीक है, और सय्यात अगर सगीरा है तो हसनात से मुराद कोई भी नेकी, इस तरह की नेकियां जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं कि जिससे कि गुनाह माफ हो जाता है। ठीक है, तो इल्ला मन ज़लमा थुम्मा बदला हुस्नन बादा सूइन फइन्नी गफूरुर रहीम। हाँ, तो जो मुरसलून होते हैं ना मेरे पास, वो डरते नहीं है। भाई डरने की तो खाली एक वजह है मेरे पास, राइट, कि भाई आपसे खुद कोई गलती हो गई हो, आपने जो है वो मेरी शान से कुछ कम कोई ऐसा काम कर लिया हो जो कि मेरे शान के मुताबिक नहीं था, तब डरना है, वरना डरने की क्या जरूरत है यार। मैं कोई नाउज़ बिल्ला भूत हूं, या मैं कोई नाउजबिल्ला कोई बिच्छू हूं, कोई सांप हूं, कोई शेर हूं, कोई नाउजबिल्ला कोई गंदी चीज हूं, कोई 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 खौफनाक किस्म की चीज हूं? नहीं, अल्लाह ताला कोई खौफनाक किस्म की चीज तो नहीं है ना भाई। तो फिर मुझसे डरना क्या मतलब? मुझसे कोई डरने की जरूरत नहीं है भाई। अगर डरना है ना तो सिर्फ जो है ना वो अपने अपनी गलती से डरना है, ठीक है ना। और जो मैंने एक निजाम बनाया हुआ है ना, उस निजाम का तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। देखो यानी एक होता है ना, आप किसी छोटे से बच्चे के साथ थोड़ा सा कर दें कुछ, तो क्या जरूरत है डरने की। लेकिन एक होता है भाई, आप किसी ऐसे से कि जिसका हर चीज के ऊपर जोर चलता हो, बहुत बड़ा हो और बहुत अजीम हो और बहुत शान वाला हो, उसके साथ जो है वो आप कुछ कर दें तो फिर तो डरना चाहिए ना, ठीक है। तो बहरहाल वो अदखिल यदक फी जेबिका तखरुज बैदा मिन गैर सू, तो आप दाखिल कीजिए यदका अपने हाथ को, फी जेबिक अपनी जेब में, ठीक है, यानी जिसको हम जेब कहते हैं, यानी गरेबान के अंदर कोई ऐसी एंट्रेंस वाली कोई जगह हो आपके लिबास के अंदर, ठीक है, उसी को हम जो है वो जेब कहते हैं, और वो इस दर्जी खास किस्म की चीज बना देते हैं लिबास के अंदर। फिर तखरुज बैदा, तखरुज यानी निकालें उसको, बैदा बैदा सफेद होकर, यानी वो निकलेगा सफेद होकर, तखरुज वो निकलेगा सफेद होकर के, मिन गैर सुअ, बगैर किसी खराबी के, ठीक है, यानी उसके अंदर सफेदी के अंदर जो है ना कोई मैल कुचैल, कोई कालिक, कोई डार्क पॉइंट, जैसे कि अक्सर आप देखते हैं अगर ट्यूबलाइट घर में लगी हुई है तो ट्यूबलाइट बड़ी लिट अप होती है, सफेद होती है, लेकिन कभी कभी ट्यूबलाइट में कोई खराबी हो जाती है, तो किसी कॉर्नर के ऊपर ना, कोने के ऊपर आपको ट्यूबलाइट में एक काला सा हल्का नजर आएगा, ठीक है ना, तो उससे जो है ना वो उसकी पूरी की पूरी सफेदी जो है वो दागदार हो गई, ठीक है। तो ये जो सफेदी होगी ना, जो आपके हाथ में होगी, इसमें किसी किस्म का कोई दाग नहीं होगा। फी तिस्री आयातिन इला फिरौन वकौम, तो ये जो है ना ये 9 निशानियां हैं, इला फिरऔना व कौमिही, यानी इज़हब जाइए इन 9 आयतों को लेकर के फिरौन की तरफ और उसके कौम की तरफ, ठीक। तो इज़हब का जो लफ्ज है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन बेसिकली इन 9 आयतों को, जिनमें से ये जिनमें 2 है ना, असा और क्या कहते हैं यद बैदवा, तो ये उन 9 में है, में शामिल। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो लोग जो है ना हो गए हैं फासिक कौम, हो गए एक फासिक कौम। फासिक किसको कहते हैं? जो कि खुलकर गुनाह करती है और दिखा के गुनाह करती है। फासिक दिखा के गुनाह करने वाले को, यानी गुनाह करके छुपाना नहीं, लोगों से छुपाना, लोगों से शर्म करना नहीं, बल्कि बताना लोगों को, कल मैंने ये किया और अब मैं ये करूंगा और अब मैंने इस बंदे के साथ ये किया है, इसको फासिक कहते हैं। और फासिक का लफ्ज हमने किसी बड़े शेख से सुना कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, अरबी जुबान में कीड़े मकोड़ों के लिए भी जो है ना वो फासिक का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने इस दोनों बातों की तदबीर करी थी कि जिस तरह कीड़े मकोड़े को मार देने से कोई नुकसान नहीं होता, कोई उनकी यानी बुकत नहीं होती, कि कीड़े मकोड़ों को मार दिया, लाखों की तादाद में मार दिया, हजारों की तादाद में मार दिया, क्या हो गया भाई इससे, वो तो मारने के काबिल ही थे ना। उसी तरीके से जो फासिक इंसान होता है ना, उसकी भी जान की कोई वैल्यू नहीं रहती, उसकी भी इज्जत की कोई वैल्यू नहीं रहती, बिल्कुल जैसा कीड़ा मकोड़ा है ना फासिक इंसान, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है, ठीक है। बाकी जो इंशाल्लाह पढ़ेंगे।